नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। सर्वोच्च न्यायालय का वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई। इसमें वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला खंड भी शामिल। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने फैसले का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्णिया में एक हवाई अड्डे और बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड सहित 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का देश के सभी जिलों में एआई तकनीकों को अपनाने का आग्रह। यूपीआई के माध्यम से एक दिन में व्यक्ति से व्यापारी लेन देन की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई। झारखंड के हजारीबाग जिले में मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए और एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज श्रीलंका का सामना हांगकांग से और संयुक्त अरब अमीरात का मुकाबला ओमान से। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों को स्थगित कर दिया है। किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति वक्फ बनाने से पहले 5 साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करने की अनिवार्यता वाले खंड पर रोक लगा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि यह खंड तब तक निलंबित रहेगा जब तक राज्य सरकारें इस शर्त के निर्धारण के संबंध में कोई समुचित नियम नहीं बना लेती हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अपना निर्णय सुनाया है। पीठ ने कहा कि उसने कानून के प्रत्येक पहलू के लिए प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है। पीठ ने कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता है।
सरकार ने नामित अधिकारी को ये निर्णय लेने की अनुमति देने वाले प्रावधान पर भी रोक लगाई है कि क्या कोई वक्फ संपत्ति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कार्यकारी अधिकारी नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि ये शक्तियों के विभाजन का उल्लंघन होगा। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों के नामांकन को अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक नहीं लगाई गई है। न्यायालय ने कहा है कि जहां तक संभव हो बोर्ड का पदेन सदस्य मुस्लिम व्यक्ति होना चाहिए। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं किए जाएंगे। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ये टिप्पणियां केवल प्रथम दृष्टया प्रकृति की हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज वक्फ संशोधन विधेयक पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये विधेयक सबसे लंबी चर्चा के बाद संसद में पारित हुआ।
सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। दूसरी बात ये है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है, और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज होते थे वो भी बंद हो जाएगा, और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के पूर्णिया से 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और नवनिर्मित हवाई अड्डे के टर्मिनल का लोकार्पण भी करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज बिहार में रेल क्षेत्र के लिए भी 6,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी दानापुर से जोगबनी के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस, जबकि सहरसा से अमृतसर के छेहरता और जोगबनी से ईरोड के बीच 2 अमृत भारत रेलगाड़ियों के परिचालन की शुरुआत करेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पूर्णिया।
बिहार के एक मखाना व्यापारी ने आकाशवाणी से बातचीत में मखाना बोर्ड बनाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है।
मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के हरदा बाजार से मखाना व्यापारी हूँ। मेरा नाम आदर्श कुमार है। मखाना बोर्ड का गठन होने से पूर्णिया में व्यापारी को बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ के मखाने के प्रोडक्ट पूरा वर्ल्ड में जाएगा। मैं इसके लिए माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हरदा आभारी बना रहूंगा।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दौड़ रहा है तो नियमों को भी उसी गति से दौड़ने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में आज विकसित भारत और फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी के लिए एआई की रूपरेखा पर नीति आयोग की रिपोर्ट जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने एआई के तीव्र विकास को लेकर आगाह करते हुए कहा कि लोगों को जागरूक होना चाहिए और नैतिकता पर अड़े नहीं रहना चाहिए। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि एआई करीब करीब समाधान प्रदान करने में सक्षम है।
AI probably is capable of giving us in situ solutions without having to remove people from where they are, but keep them there, but give them the solutions which has been waiting for decades.
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने भी इस कार्यक्रम में भागीदारी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने भविष्य की प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करने और प्रतिभा पाइपलाइन विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
अगले साल फरवरी में AI इम्पैक्ट समिट होगा। इसकी तैयारी के लिए नीति आयोग की तरफ से पूरे देश भर के सभी जिलों के साथ ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, उसको लेके समागम किया गया और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको सबके साथ शेयर किया गया।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुब्रमण्यम ने प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI उपयोगकर्ता अब एक दिन में 10 लाख रुपए तक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने निर्धारित श्रेणियों में व्यक्ति से व्यापारी लेन देन के लिए एकल लेन देन सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। एक रिपोर्ट।
NPCI ने पिछले महीने प्रति लेन देन सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था, जबकि अधिकांश मामलों में कुल सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। हालांकि व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन की सीमा 1 लाख रुपए प्रतिदिन पर बरकरार रहेगी। वहीं क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान अब प्रति लेन देन 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है, जो एक दिन में अधिकतम 6 लाख रुपए हो सकता है। NPCI ने UPI सीमा में यह संशोधन उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान को सरल और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए किया है। समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
वस्तु और सेवा कर परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर की दरें कम कर दी हैं। आज हम कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिन पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
इस महीने की 3 तारीख को GST परिषद ने अगली पीढ़ी के GST सुधारों की घोषणा की, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में करों में कटौती होने जा रही है और आम आदमी को बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार ने 2,500 रुपए से कम मूल्य के जूते चप्पलों पर GST की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। सरकार ने लकड़ी, पत्थर और धातु से बनी मूर्तियों पर भी कर की दर घटाकर 5% कर दी है, जो पहले 12% की श्रेणी में थी। कांच की मूर्तियां, लोहे, एल्यूमिनियम, पीतल और तांबे से बनी कलाकृतियों पर भी इसी तरह की कटौती की गई है। मीडिया से बात करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कर विशेषज्ञ टी सुरेश ने कहा कि इन सुधारों का देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
सो द रिफॉर्म्स बोथ इन इनकम टैक्स एंड GST विल डेफिनेटली हैव अ बिग इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, बिकॉज़ इफ यू सी ऑन फरवरी 1st अप टू 1 लाख पर मंथ इफ यू आर नॉट अ सैलरी क्लॉज यू डोंट हैव टू पे टैक्स, सो दैट मींस मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल।
त्योहार के सीजन से पहले ये अगली पीढ़ी के GST सुधार आम आदमी पर कर का बोझ कम करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था की गति को और अधिक बढ़ावा देंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक WPI पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर अगस्त में बढ़कर 0.52% हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2025 में सकारात्मक मुद्रास्फीति दर मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों, अन्य विनिर्माण गैर खाद्य वस्तुओं, अन्य गैर धात्विक खनिज उत्पादों तथा परिवहन उपकरणों की कीमतों में वृद्धि के कारण है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि उत्पाद विनिर्माण की गुणवत्ता उच्च मानक का बनाए रखना भारत जैसे विकसित देश के लिए समय की मांग है। उन्होंने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल आयोग IEC की 89वीं आम बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि उच्च मानक अनुपालन लागत को नहीं बढ़ाता है, बल्कि ये दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा देकर अपव्यय को कम करके और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आचार्य देवव्रत महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर ने आज मुंबई स्थित राजभवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। वे महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल हैं। वे CP राधाकृष्णन का स्थान लेंगे, जिन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया है। झारखंड में हजारीबाग जिले के टाटीझरिया थाना क्षेत्र में आज सुबह हुई एक मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। सुरक्षा बलों ने मौके से AK-47 राइफल सहित कई हथियार बरामद किए हैं। ये अभियान हजारीबाग पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने संयुक्त रूप से चलाया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ते भारत की प्रमुख उपलब्धियों पर आकाशवाणी प्रस्तुत कर रहा है विशेष श्रृंखला सेवा पर्व। सुनिए 15 सितंबर को शाम 7:10 से 100.1 MHz FM गोल्ड पर।
ये आकाशवाणी है। सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम बात करेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने नमामि गंगे अभियान के माध्यम से गंगा का कायाकल्प किया है।
भारत की जीवन रेखा गंगा नदी पवित्र, शाश्वत और भारतीय अर्थव्यवस्था की एक अनमोल धारा है। मोदी सरकार द्वारा जून 2014 में शुरू किया गया नमामि गंगे अभियान इस कोमल और उदारपूर्ण नदी के स्वास्थ्य को बहाल करने की एक महत्वाकांक्षी और समग्र पहल है। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा की स्वच्छता के लिए सामूहिक जिम्मेदारी पर विशेष बल दिया है।
सदियों से कल कल बहती माँ गंगा को स्वच्छ रखना हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ नमामि गंगे अभियान की शुरुआत।
नमामि गंगे एक बहुआयामी अभियान है जो प्रदूषण निवारण, पारिस्थितिकी पुनरुद्धार, क्षमता निर्माण और सामुदायिक सहभागिता को एकीकृत करता है। यह नदी की पर्यावरणीय अखंडता और उस पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका दोनों पर केंद्रित है। इस अभियान ने प्रदूषण निवारण में उल्लेखनीय प्रगति की है। सीवेज उपचार क्षमता 2014 के बाद से 30 गुना से भी अधिक बढ़ गई है। गंगा डॉल्फिन की जनसंख्या में वृद्धि नदी की पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार का प्रमाण है। गंगा नदी के उन हिस्सों में भी अब डॉल्फिन देखी जा रही है जिनके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। जिसे कभी एक असंभव सपना माना जाता था उसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया गया है। लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रही पवित्र गंगा अब एक नई आशा के साथ बह रही है जहां आस्था और दृढ़ संकल्प दोनों का मिलन हो रहा है। विष्णु के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया है। कुलमन घिसिंग ने आज ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री, ओम प्रकाश आर्यल ने गृह तथा विधि मंत्री और रामेश्वर खनल को वित्त मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आश्वासन दिया है कि भारतीय नागरिक चंद्र नागमलैया अन्नामलाई के नृशंस हत्या के आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को पहले भी जघन्य अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था लेकिन जो बाइडेन के शासन में उसे रिहा कर दिया गया। अन्नामलाई की 10 सितंबर को टेक्सस के डल्लास में हत्या कर दी गई थी जिसके आरोप में 37 वर्षीय मार्टिनेज को गिरफ्तार किया गया। एशिया कप क्रिकेट में आज अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात का सामना ओमान से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप ए के अन्य मुकाबले में श्रीलंका का सामना दुबई में हांगकांग से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:00 शुरू होगा। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तराखंड में भी ऐसी स्थिति की संभावना व्यक्त की है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोगों के जोखिम और उपचार पर विस्तृत चर्चा प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रोता हमारे नंबर 0112342105 और 0112331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय का वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई। इसमें वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला प्रावधान भी शामिल। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने फैसले का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्णिया में एक हवाई अड्डे और बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड सहित 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का देश के सभी जिलों में AI तकनीकों को अपनाने का आग्रह। UPI के माध्यम से एक दिन में व्यक्ति से व्यापारी लेन देन की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई। और एशिया कप में आज श्रीलंका का सामना हांगकांग से तथा संयुक्त अरब अमीरात का मुकाबला ओमान से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।